Mantan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए जैव विविधता संरक्षण के महत्व और भारत की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
नमस्कार। हम मानवों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, अन्य जीवों के लिए, अन्य वनस्पतियों के लिए अवसर घटते जा रहे हैं और इसी घटते हुए अवसर अन्य जैव जगत के लिए, जिसमें प्राणी और वनस्पति दोनों हैं, उसमें 3 नवंबर का कहने की आवश्यकता हमें है, आपको है। क्यों और कैसे और भारतवर्ष में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं जैव विविधता बढ़ाने के लिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस चर्चा के लिए आमंत्रित हैं जाने माने देश के पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। मुकुल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू, नमस्कार।
सबसे पहले तो हम यही मुकुल जी समझना चाहेंगे कि जैव विविधता दिवस की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी।
एक बड़ी अजीब ही परिस्थिति विश्व लेवल पर हुई है कि नगरीयकरण हुआ, 3/4 आबादी यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में 50 साल पहले शहरों में पहुंच गई थी और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का एक प्रकोप आया विश्व भर में
जी।
और क्योंकि उनके द्वारा यह हुआ था तो उन्होंने उसका बहुत प्रचार किया, उस पर साइंटिफिक नॉलेज पर ध्यान दिया और हम सबको मालूम है कि कोई क्लाइमेट चेंज करके एक समस्या हमारे सबके सामने है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से हमारा विकास हुआ है गांव में, या जो हम पहले जंगलों में निर्भर थे, उसका सीधा असर भी प्रकृति पर पड़ा है और हमने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। विश्व भर में भी ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इसकी शुरुआत नगरीकरण से नहीं थी, विकास से नहीं थी, पर इसकी जो शुरुआत थी वो हमारे कृषि उद्योग से ही शुरुआत हुई थी। और जब कृषि को छोड़कर हम लोग फैक्ट्रियों पर निकल गए या नगरों में निकल गए तो विदेशी देशों में कृषि पर उतना जोर नहीं रहा, ना लोग निर्भर रहे, सब लोग नगरों में पहुंच गए या फैक्ट्रियों में पहुंच गए। अब कई देश ऐसे हैं, भारत उनमें से एक है, जिनमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी काफ़ी आबादी है और वो काफ़ी हद तक वो आसपास के जंगलों पर निर्भर है
जी।
इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी स्थान हैं और भारतवर्ष में उनकी संख्या काफ़ी है जो वन के अंदर ही रहते थे व्यक्ति और उनका एक नेचुरल संतुलन था वहाँ के जनजीवन के साथ, वहाँ के जानवरों के साथ, वहाँ के वन के साथ, वहाँ के प्रकृति के साथ। अब जो विकास आया तो उससे वो असंतुलन होने लग गया। इस असंतुलन का काफी बड़ा क्षेत्र भारत में है और हम लोगों ने, या कहिए पुरानी सरकारों ने, इस पर इसका ध्यान नहीं दिया जो अब ध्यान दिया जा रहा है। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर सबने सुना है कि भाई एक टाइगर को देखने लोग जाते हैं जंगल के अंदर और उसकी सुरक्षा के लिए उसके एक क्षेत्र निर्धारित कर रखा है जहां कोई नहीं जाता है, उसके आगे एक और क्षेत्र है जहां कुछ ही लोग जाते हैं। आप टाइगर को देखने जाएं तो आपको कुछ ही क्षेत्रों में जाने दिया जाएगा और अधिक संख्या में अंदर व्यक्ति नहीं जा सकते हैं और जो वहां लोग रह रहे हैं उनको भी एक संतुलित रूप से कुछ नियंत्रण करके रखा गया है। तो वो व्यवस्था या वो स्थिति हमारे नॉलेज में है, पर इसी प्रकार से अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ जो स्थानीय लोग रहते हैं, आदिवासी लोग हम उनको कहते हैं, उनके अलावा कोई और जाता नहीं था, कोई गया नहीं था। पर सड़क आई, कहीं कोयले का खनन हुआ, कहीं कुछ इस्पात का कारखाना लगा, रेलवे लाइन बनी, तो उससे उनका एक असंतुलन आना शुरू हो गया। अब इस असंतुलन का नुकसान ये होता है कि कुछ हमारे पदार्थ ऐसे हैं, कुछ वन्य जंतु ऐसे हैं जो अगर समाप्त हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो आगे चल के हमारी सभ्यता, हमारे समाज, हमारे इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। मिसाल के रूप पर जो भी हमारी अधिकांश दवाइयां जो हम आज ले रहे हैं
जी,
उनकी शुरुआत पहले वहीं से हुई थी। मलेरिया होता है, हम क्विनिन की गोली खाते हैं, क्विनिन सबसे पहले एक पत्ती से निकाला गया था
जी,
जो लैटिन अमेरिका में पानी में गिरती थी, जिसको मलेरिया होता था वो उस पानी को पीते थे, वो ठीक हो जाते थे। इसी तरह से जड़ी बूटियों का हमको ज्ञान है भारत में। तो वो तो एक उदाहरण हुआ कि अगर ये प्रकृति, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, पहले से चली आ रही है, वन जंतु, पेड़ पौधे, वो अगर समाप्त हो जाएंगे या असंतुलित रूप से रहेंगे तो उसमें हमारे समाज में आगे चल के आर्थिक व्यवस्था में फर्क पड़ेगा। इसको थोड़ा समझने में थोड़ा समय इसलिए लगता है कि हमारे दैनिक जीवन में इस तरह की चर्चा नहीं होती है।
जी,
क्लाइमेट चेंज का हमको मालूम है, आज दिल्ली में अगर थोड़ा प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमारे गले में खराश होती है, हमको महसूस होता है। पर अगर झारखंड के जंगल में या छत्तीसगढ़ के जंगल में असंतुलन होता है तो हमको पता नहीं चलता है। इसको हमको बाद में पता चलेगा, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो खत्म हो गए, नष्ट हो गए, या कुछ प्रकृति के जो हमको आगे चल के फायदा होना था वो नहीं होगा। तो इसीलिए ये विश्व स्तर से ही यह शुरू हुआ था बहुत पहले कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको अलग रखा जाए।
जी।
और अलग रखने के तीन मकसद थे। पहला तो ये था कि इसमें रिसर्च की जाए कि इसका क्या फायदा है, क्या चीज समाप्त नहीं होनी चाहिए जिसको आगे चल के समाज को फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। दूसरा ये था जो मुख्य बात इसमें आई कि जो व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं उनके साथ संतुलित विकास कैसे किया जाए कि उनका भी विकास हो और क्षेत्र का नुकसान भी ना हो।
जी।
तो इसलिए मैंने टाइगर रिजर्व का उदाहरण दिया। टाइगर गेम सेंचुरी कहिए या टाइगर रिजर्व कहिए, वो एक छोटे से क्षेत्र में है जहाँ पे टाइगर के लिए पर्याप्त मात्रा में जंगल सुरक्षित रखा जा सकता है। जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व की बात है वो उससे कहीं बड़े प्रकार में निर्धारित की जाती है।
यहाँ थोड़ा सा हम इसी चीज को समझना चाहेंगे श्रोताओं को ये जानकारी देते हुए कि श्रोताओं, भारत वर्ष को 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में गिना जाता है दुनिया में। तो आपने जिस चीज की चर्चा की कि टाइगर रिजर्व एक हुआ, इसी तरह पक्षी अभयारण्य है, तो हम जो 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में दुनिया में आते हैं और बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो भारत एक अन्य देशों से अलग और इसकी आवश्यकताएं कहाँ अलग हैं और जिस तथ्य को आप रखना चाहते थे वह क्या है?
भारत का आपने कहा चर्चा की तो सुंदरबन एक
अलग
है, गल्फ ऑफ मन्नार साउथ इंडिया में है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में।
जी।
पूरे नीलगिरी क्षेत्र को किया गया है इसमें, जिसमें टाइगर भी है, हाथी भी है और नीलगिरी थार भी है।
जी।
आगे चल के सोचा जा रहा है कि टडोबा में टाइगर रिजर्व है, उसके बड़े वृहद क्षेत्र को भी एक बायोडाइवर्सिटी रिजर्व कर दिया जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर टाइगर देखने जाना है तो टडोबा जाओ।
जी, जी, जी।
कोई बात होगी, क्योंकि टडोबा एक दूरस्थ इलाका रहा है, ज्यादा वहां पे बाहरी प्रभाव कम पड़ा है। तो थार राजस्थान का जंगल है, वो भी इस लिस्ट में आएगा। तो इस प्रकार से भारत में अनेक किस्म की जगहें हैं, अनेक किस्म की बायोडाइवर्सिटी है जिसमें रिजर्व बनाए गए हैं। अन्य देशों में इतना इस प्रकार से नहीं है।
जी।
ब्राजील में बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, जंगली क्षेत्र अमेजोन कहते हैं, पर वो एक ही प्रकार का है।
जी, जी, जी।
यहाँ पे भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न आवश्यकताएं हैं, भिन्न इसमें से रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसको देखते हुए ये कहा गया है कि इस पर इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और आपने कहा भारत के एक है, पर भारत का तीसरे स्थान पर है जहाँ जंगल पनप रहा है। इन्हीं स्थानों में अब हमने देखा है कि आंकड़ों के हिसाब से कि इन स्थानों में व्यवस्था इतनी रखी गई है कि ये सुरक्षित रखे गए हैं, सिर्फ कागज में ही नहीं, पर वास्तविकता यह है कि यहाँ पे जंगल, क्योंकि जंगल से ही पता चलता है कि भाई किस प्रकार की सुरक्षा यहाँ व्यवस्था है। और हर एक क्षेत्र में आदिवासी या जो लोग पहले से इन क्षेत्रों में रह रहे थे वो अभी भी रह रहे हैं, उनका अभी भी विकास हो रहा है, पर वो संतुलित विकास किया जा रहा है और उसके लिए अलग रिसर्च हो रही है। तो एक रिसर्च तो हो रही है कि प्रकृति से हमको क्या लाभ होगा और प्रकृति से क्या नुकसान होगा अगर प्रकृति खत्म हो जाएगी, और दूसरी रिसर्च हो रही है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनका किस तरह से विकास किया जाए, किस तरह से उनका संबंध बनाया जाए यहाँ के वन जंतुओं में और जो यहाँ की वृक्ष हैं और जो नेचर कहिए। तो ये दोनों रिसर्च एक साथ चल रहे हैं और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आगे चलकर हम इतना सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब भारत का और विकास होगा तो अवश्य ही यहाँ से कुछ नई दवाएं, नई चीजें निकल सकती हैं।
यहाँ पर मुकुल जी फिर एक बार हम समझना चाहेंगे कि भारत सरकार की किन नीतियों का ऐसा योगदान रहा जिससे ये जो कुछ हम कर रहे हैं उसका लाभ हमें जमीन पर दिख रहा है। जैसे आपने कहा कि हम वन लगा रहे हैं और उसके परिणाम हमें मिल रहे हैं, हम जो वृक्षारोपण कर रहे हैं वो वनीकरण के रूप में सामने आ रहा है। और इससे यदि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूँ तो द्वारका इलाका दिल्ली का, वहाँ पहले सिर्फ फ्लैट्स हुआ करते थे, लेकिन पार्क लगे, पेड़ 20-25 साल हो गए, तो चिड़ियों का पूरा जगत पनप गया। इस तरह कुछ और उदाहरण देना चाहेंगे आप जहाँ ऐसे सफल उदाहरण रहे हों?
एक तो उदाहरण ये है कि साउथ अफ्रीका से चीता लाके हमने मध्य प्रदेश में छोड़ा।
जी,
ये कोशिश की गई कि पहले भारतवर्ष में चीता हुआ करते थे, चीता रखते थे शिकार खेलने के लिए, फिर वो खत्म हो गए किसी तरह से। तो हम उनको यहाँ लाके पनप सकते हैं, वो यहाँ नहीं पनप सकते हैं।
जी।
उनकी ब्रीडिंग भी हुई है, छोटे बच्चे भी हुए, इसका मतलब वो यहाँ पनप रहे हैं।
जी।
उसका असर पड़ेगा। इसी तरह से हाथी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो उस क्षेत्र का विकास भी करता है।
कैसे?
उसका क्षेत्र का विकास इसलिए करता है कि उसके साथ कुछ चिड़ियाएं भी साथ चलती हैं उसके।
बिल्कुल बिल्कुल।
कुछ जंगल भी कम होते हैं।
श्रोताओं, ये मार्के की बात है, इसे ध्यान से समझे कि किस तरह जो वन्य जीव हैं वो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं और क्षेत्र में विकास के काम करते हैं। जी।
और उसकी जो वेस्ट है उसमें भी कुछ बीज, कुछ और पदार्थ आ जाते हैं ताकि वो भी फैल जाते हैं जंगल में। तो एक प्रकृति ने ही अपना एक ऐसा संतुलन बनाया था कि एक पर दूसरा निर्भर है। शुरू में जो आदिवासी रहते थे वो प्रकृति के साथ ही मिले हुए थे।
जी।
जब बाहर का प्रभाव आया, कुछ बिजली आई, कुछ फैक्ट्रियां लगी, कुछ लकड़ी और कटने लगी, अपने प्रयोग के नहीं बाहर भेजने के लिए, तो एक असंतुलन आया।
जी।
अब उस असंतुलन को स्टडी करने के लिए ये बायोडायवर्सिटी रिजर्व बनाए गए हैं कि जिस तरह से जो लोग अंदर रहते हैं उनकी आवश्यकता भी है। अगर लोग बिल्कुल हम हटा देंगे जंगल के अंदर से या प्रकृति के अंदर से अलग कर देंगे तो उसका भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।
जी, जी।
कि जो संतुलन है उसको कैसे रिस्टोर किया जाए आज की परिस्थितियों को देखते हुए।
हम यदि ये समझना चाहें कि भारत सरकार के जो प्रयास रहे हैं वो जैव विविधता के लिए, वो किस प्रकार सहायक हुए हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, यदि हम कुछ कानून को समझना चाहें या सरकार के प्रयासों को समझना चाहें तो किस तरह आकलन कर सकेंगे?
अंग्रेज सरकार ने लकड़ी का कमर्शियल ऑपरेशन, लकड़ी को जंगल से निकालकर बेचने का काम शुरू किया। उसके पहले जो राजा थे यहाँ पे या जो हमारी समाज थी वो जंगल को बड़े पैमाने में काटती थी अपने काम के लिए, घर बनाना है, महल बनाना है, पुल बनाना है, पर लकड़ी जंगल को काट के कहीं और नहीं भेजती थी। जब औद्योगीकरण हुआ जंगलों का तो उससे उनकी क्वालिटी कहिए, निर्गुणता कहिए, या उनकी मात्रा संख्या कम हुई। तो सबसे पहले तो शासन ने जंगल के कटान पर रोक लगाई।
जी।
जैसे जैसे और इस पर स्टडी किया गया या अध्ययन किया गया और लोगों ने अंदर देखा कि भाई अब जंगल तो पनप रहा है पर विकास भी आ रहा है।
जी।
तब ये जरूरत महसूस होने लगी कि सिर्फ लकड़ी ही नहीं, सिर्फ पेड़ ही नहीं, और जो वहां पे पदार्थ हैं और जो वहाँ जानवर हैं, घास को लेके, और सिर्फ टाइगर या जानवर ही नहीं, जो छोटी चिड़िया हैं, वो सबको पनपने की जरूरत पड़ती
जी,
है
जी, जी।
और वो एक दूसरे पर निर्भर हैं।
बिल्कुल।
सबसे
बिल्कुल।
बड़ी जानकारी यह निकली कि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं।
बिल्कुल।
ये अकेले नहीं देखा जा सकता है और मानव जाति भी उनके ऊपर निर्भर है।
बिल्कुल।
तो जब ये बात सामने आई कि एक दूसरे पर निर्भर हैं तो ये सामने आया कि संतुलित विकास होना चाहिए और इस निर्भरता को, इस बैलेंस को नहीं तोड़ना है।
बिल्कुल।
उस पर भारत सरकार बहुत अच्छे तरह से कामयाब हुई है।
आम हमारे श्रोता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम सामान्य जन, सुनने वाले लोग किस तरह जैव विविधता को बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं?
इनके योगदान के रूप में तो ये है कि जो लोग ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहते हैं उनमें ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए या उनमें ये जागरूकता होनी चाहिए कि इस क्षेत्र से हमको आज लकड़ी काट कर या जानवर को मार कर लाभ नहीं उठाना है, क्योंकि ये हमारी आगे वाली पीढ़ियों पर इसका एक असर होगा। उन क्षेत्रों में जिन जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं उनमें ये जागरूकता लगने की जरूरत है कि तुम्हारे दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करो ताकि ये क्षेत्र पनपे।
यानी श्रोताओं, यही हमारे विशेषज्ञ का संदेश कि हम जहाँ कहीं हैं वहाँ पर जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, वहाँ की वनस्पतियों की रक्षा के लिए अपना जो भी योगदान हम दे सकते हैं अवश्य दें, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। तो आप सभी श्रोताओं की ओर से हम मुकुल सानवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे जैव विविधता संरक्षण के महत्व और भारत की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।